जहां कपड़े हैं वहां कपड़े पहनने के मौके खोजने पड़ते हैं, जहां आदमी ठंड से ठिठुर रहा है वहां कपड़ा नहीं। वितरण का आधार परचेज एंड सेल है। इसलिए हमारे आज के समाज की मुख्य संस्था है बाजार, मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी है। हर वस्तु का महत्व बाजार में तय होता है, फिर वो देवता हो, धर्म हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, कला हो, सबका बाजार भाव देखा जाता है। सब पर एक प्राइस टैग है, एक कीमत की चिप्पी लगी हुई है। तो क्रांति क्या है? वितरण का आधार परचेजिंग पावर नहीं होगा, क्रय शक्ति नहीं, आवश्यकता वितरण का आधार होगा। यही कम्युनिज्म है, यही सोशलिज्म है और यही डेमोक्रेसी भी है। इसी को हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं, यही लोकतंत्र है। जहां चीज उसको मिलती है जिसको जरूरत है, उसको नहीं मिलती जो खरीद सकता है या छीन सकता है। अगर समाज परिवर्तन डंडे से होता है, शस्त्र से होता है, तो मित्रों खरीदने वाला जाएगा, छीनने वाला आएगा। साधारण नागरिक जैसा है वही वो रह जाएगा। इसलिए ये समाज परिवर्तन लोकतांत्रिक पद्धति से होना चाहिए, ये डंडे से नहीं हो सकता। क्रांति डंडे से होगी तो क्रांति डंडे वाले की होगी, क्रांति राज्य से होगी तो राज्य चलाने वालों की होगी, क्रांति अगर पैसे से होगी तो पैसे वाला उसे खरीद लेगा, जैसे आज सब खरीदता है। पैसे वाला धर्म खरीदता है, देवता के दर्शन खरीदता है, देवता का चरणामृत तीर्थ खरीदता है, देवता का प्रसाद खरीदता है और जयपुर के बाजार में जाकर देवता को भी खरीद लेता है और वोट खरीद कर राज्य खरीद लेता है। आज पैसे वाला खरीद रहा है, कल डंडे वाला छीन लेगा। साहूकार की सत्ता जाएगी, सिपाही की सत्ता आएगी, नागरिक की सत्ता नहीं होगी। नागरिक वो है जिसके पास हुकूमत नहीं, हथियार नहीं और पैसा नहीं, वो नागरिक है। उसकी सत्ता आनी चाहिए और उसके पराक्रम से आनी चाहिए, ये क्रांति। तो मित्रों मैंने आज आपके सामने क्रांति के तीन पहलू, तीन एस्पेक्ट्स रखने की कोशिश की है। पहला कल्चरल एस्पेक्ट, दूसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट और तीसरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ आर्थिक एस्पेक्ट है, जिसको आज नहीं कल रखने की कोशिश करूंगा, ज्यादा आपका समय आज नहीं लूंगा। पॉलिटिकल राजनीतिक एस्पेक्ट का क्या, क्रांति कब होगी? जब उम्मीदवार की, कैंडिडेट की डेमोक्रेसी जाकर उम्मीदवार की लोकशाही की जगह वोटर की, नागरिक की लोकशाही आएगी। पैसा और डंडा दोनों की जगह वोट लेगा, मत लेगा, पैसे से नहीं, डंडे से नहीं, हुकूमत से नहीं। क्रांति आएगी, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन क्रांति आएगी वोट से। इसके लिए वोट को होश, नागरिक को, वोटर को होश दिलाना होगा, उसका संगठन करना होगा, उसको वोट का महत्व समझाना होगा और मित्रों वो समझ सकता है। वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार है, वो समझ सकता है, वो समझेगा। उसको यह समझाने की आवश्यकता है। कौन समझाएगा जो वोट मांगता नहीं है? क्या समझाएगा कि वोट बेचो नहीं, वोट छीनने मत दो, वोट जाति और धर्म के नाम पर मत दो। और वहां जाकर उसका विरोध करना होगा, उन गुंडों का, उन पैसे वालों का। मित्रों, राज्य का विरोध करना आसान है क्योंकि पुलिस का सिपाही आपको विशिष्ट स्थानों पर ही मार सकता है। गुंडा और पैसा आपका पीछा आपके घरों में, गलियों में, बाजार में, हर जगह कर सकता है। इसलिए आज के तरुण और तरुणियों के लिए विशेष पराक्रम की आवश्यकता है। स्वराज्य का आंदोलन अपेक्षाकृत सस्ता था, उसमें कम वीरता की आवश्यकता थी। इस क्रांति के आंदोलन में अधिक वीरता की आवश्यकता होगी। अब इस क्रांति का नायक नागरिक होगा, राजा नहीं, सिपाही नहीं, साहूकार नहीं, नागरिक होगा। नागरिक वो है जिसके हाथ में उत्पादन के औजार हैं। उत्पादन के औजार ही तलवार को बनाते हैं, उत्पादन के औजार ही तिजोरी को बनाते हैं, उत्पादन के औजार ही तख्त को बनाते हैं। ये समाज का विधाता है लेकिन ये मूर्छित है, उसकी शक्ति का भान उसको कराना होगा। ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। ये तीन प्रकार के क्रांतियों का की थोड़ी सी व्याख्या आज मैंने आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत की है। कल आर्थिक क्रांति के विषय में कहूंगा, इसमें से लोक समितियों के लिए कार्यक्रम अपने आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा, थोड़ा विचार करेंगे तो। आज के लिए इतना काफी है। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार। विकेंद्रीकरण, और दूसरा शब्द है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ऐसा लोकतंत्र, ऐसी लोकशाही जिसमें साधारण नागरिक का सहभाग हो, साझा हो, साझेदारी की लोकशाही, भागीदारी की लोकशाही। इसे अब तक फेडरल डेमोक्रेसी भी कहते थे, और ये माना जाता था कि फेडरल डेमोक्रेसी इज द लास्ट वर्ड इन पॉलिटिकल साइंस। राज्य शास्त्र में ये जो फेडरल डेमोक्रेसी है, सांघिक लोकराज्य, इसको अंतिम शब्द माना जाता था। मित्रों, मनुष्य के जीवन में कोई अंतिम शब्द नहीं होता। देयर इज नो लास्ट वर्ड इन लाइफ, नॉट इवन डेथ। मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन के विकास में कोई अंतिम शब्द नहीं आता। और दूसरी बात, हर समस्या अपने में नई होती है। एवरी प्रॉब्लम दो इट अपीयर्स ओल्ड इज ओरिजिनल। हर बच्चा जो पैदा होता है वो चलना बोलना नए से सीखता है, नए सिरे से। भाषा वो पुरानी होती है लेकिन उसको सीखनी पड़ती है, चलना भी सीखना पड़ता है। इसलिए जिस माँ का बेटा होता है उसका आनंद हर बच्चे के विषय में मौलिक होता है, ओरिजिनल होता है। आपके घर में जो छोटा बच्चा होता है उसकी हर चीज आपको नई मालूम होती है। वो बोलने लगा मानो दुनिया में इससे पहले कोई बोला ही नहीं। वो चलने लगा ऐसा लगता है कि इससे पहले कोई चला ही नहीं दुनिया में।
जीवन का ये रोमांस है, यही जीवन का आनंद है, यही उसका उसकी उसका रहस्य भी है, मिस्टरी, और उसकी मिस्टरी में उसका आनंद है। जीवन में हर समस्या नई होती है, उसका उत्तर खोजना पड़ता है। ये कोई अंक गणित की पुस्तक नहीं है कि एक तरफ सवाल है दूसरी तरफ जवाब है। देयर इज नो रिवोल्यूशन मेड ईजी। कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स मेड ईजी, साइंस मेड ईजी, लेकिन रिवोल्यूशन मेड ईजी नहीं है। हमारी हर समस्या नई होती है, उसका जवाब नया खोजना होता है। तो यह शब्द हमारे देश के जीवन के लिए लागू कैसे हों? डिसेंट्रलाइजेशन और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। कल मैंने आपसे कहा कि अंग्रेज एक चीज दे गए इस देश को, जिसको हम आज बिगाड़ रहे हैं, तोड़ गए हैं, भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक अंग्रेजों से पहले इस देश में नहीं था। भारतीय भारत देश था, पूरे भारत देश के लिए प्रेम भी नहीं था, प्रेम था भारत की तीर्थ स्थानों के लिए, भारत की पवित्र नदियों के लिए और भारत के पवित्र पर्वतों के लिए। हिमालय देवतात्मा था, गंगा स्वर्गारोहण वैजयंती थी, नर्मदा भगवान की दी हुई सुरभि थी, नदी थी। इस तरह से हमारे देश की नदियां, पर्वत और तीर्थ स्थान पवित्र थे, लेकिन इस भूमि के विषय में जो प्रेम था वो धार्मिक था। उसमें एक बड़ी कमी थी। कमी ये थी कि इस जमीन पर रहने वालों के लिए प्रेम हमारे मन में नहीं था। जमीन के लिए प्रेम था, उस पर रहने वालों के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा ये बड़ी कमी थी। पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म, लव ऑफ लैंड इज पेट्रियटिज्म, इट इज नेसेसरी, उसकी आवश्यकता होती है, बट इट इज नॉट इनफ, वो पर्याप्त नहीं है, सफिशियंट नहीं। जमीन का प्रेम तो पाकिस्तानवादियों को भी था, इसलिए बांग्लादेश बना और ऊपर पाकिस्तान बना। ये सब जमीन का प्रेम उनको नहीं था, ऐसा तो था नहीं, ये जमीन हमको चाहिए उन्होंने कहा। जमीन का प्रेम राजाओं को भी था, जमीन का प्रेम जमींदारों को भी था, लेकिन उनमें से किसी को उस जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए प्रेम नहीं था। तो पेट्रियटिज्म क्या है? जमीन पर रहने वाले लोगों को के लिए प्रेम, ये नेशनलिज्म है। दो चीजों को आप अलग अलग समझिए। नेशनलिज्म इज ए डेली प्लेबिसाइट, जस्ट एज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। आज आ जाइए आप आगे, सब आने वालों को जगह हो जाएगी। मित्रों, ये मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, आपको कोई पाठ भी नहीं दे रहा हूं, आपके साथ बैठकर सोच रहा हूं। आप सिर्फ सुनिए नहीं, मेरे साथ सोचते भी चाहिए। हम सब साथ बैठकर सोचें। तो जमीन के लिए प्रेम आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। दिस इज पेट्रियटिज्म। अब नेशनलिज्म क्या है? It's a daily plebiscite. Just as the existence of an individual is a constant determination to live. हर आदमी सांस लेता है और जीता है, इसका मतलब यह है कि जीने का संकल्प उसके सांस सांस में से व्यक्त होता है। इस तरह से जिस देश में मनुष्य एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं उसमें राष्ट्रीयता होती है। जिस देश में मनुष्य एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते वहां डिसेंट्रलाइजेशन मींस डिसइंटीग्रेशन। उसमें से जो हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है, विभक्तिकरण होता है। अलग अलग सब हो जाते हैं और जिस देश में विविधता हो उस देश में विविधता विरोध में परिणत हो जाती है, विविधता विषमता बन जाती है। यह हमारे देश में हुआ। We began with denominationalism and now we are living in an age of multinationalism. शुरू में हमने किया denominational nationalism. Denominationalism का मतलब क्या है? सांप्रदायिक राष्ट्रीयता। राजा राम मोहन राय से जो शुरू हुआ वो हिंदू राष्ट्रवाद शुरू हुआ। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है इस भावना से शुरू हुआ। तो वो लोकमान्य के जमाने तक चला। मॉडल्स थे हमारे देश में, उनमें भारतीय राष्ट्रीयता नहीं थी। उनमें से बहुत से लोग इस देश को कार्बन कॉपी या सेकंड हैंड कॉपी बनाना चाहते थे पाश्चात्य देशों की। इसमें से एक प्रतिक्रिया आई और प्रतिक्रिया में से आर्य समाज आया, थियोसॉफिकल सोसाइटी आई। इन्होंने इनकार करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि हमारा जो पुराना था वो सब अच्छा था, बाल विवाह अच्छे थे, जाति अच्छी थी, इस तरह की किताबें लिखी जाने लगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने लिखी और कलकत्ता में एक चीफ जस्टिस था कलकत्ता हाई कोर्ट का, सर जॉन वुड्रॉ, इज इंडिया सिविलाइज्ड नाम की किताब लिखी और उसमें प्रतिपादन यह किया कि इस देश में जो है वही अच्छा, हम भी समझे कि अच्छा है। अंग्रेजों के सामने ठहर नहीं सके। मित्रों, इस देश पर दो जातियां ऐसी आई जिनके सामने हम नहीं ठहर सके, एक तो मुसलमान और दूसरे अंग्रेज, और बहुत सों को हमने पचा लिया, आत्मसात कर लिया, यहाँ वो रहने लगे और हिंदू समाज में एक तरह से घुल मिल गए। लेकिन मुसलमान आया समानता को लेकर, हिंदू समाज में समानता का अभाव था, आज भी है, उस वक्त तो था ही। आप ट्रेन में चल रहे हो, नाम पूछा आपने, उसने अब्दुल हमीद कह दिया, इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछता है। आपने पूछा क्या नाम है, उसने डेविड जॉर्ज कह दिया, बस समाप्त है। लेकिन नाम पूछने पर दादा धर्माधिकारी कहा तो जिज्ञासा समाप्त नहीं होती। जब तक वो ये ना जान ले कि इसकी जाति क्या है। मुसलमान में संप्रदाय रियलिटी है, वास्तविकता है, हिंदू में जात जाति वास्तविकता है। जाति का स्वरूप और संप्रदाय का स्वरूप थोड़ा सा उल्लेख मैंने किया था, मित्र दो भाषणों में तो ऐसा हो नहीं सकता है, अध्ययन मैं थोड़े थोड़े में कहता चला जाता हूँ। मुसलमान के संप्रदायवाद का परिणाम, पर्यवसान, उसका कल्मिनेशन पाकिस्तान में हुआ। मुसलमान में जो समानता है वो इस्लामिक समानता है, ह्यूमन इक्वालिटी नहीं। मनुष्य मात्र समान वो नहीं मानता है, मुसलमान सारे समाज सारे समान हैं, और ऐसी समानता दुनिया के और किसी देश में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। ईसाइयों में, क्रिश्चियंस में काले गोरे का भेद है, लेकिन मुसलमान में काले गोरे का भेद नहीं, कोई भेद ही नहीं है। एक दस्तरखान पर वो भोजन कर सकता है, अमीर मुसलमान, गरीब मुसलमान, काला मुसलमान, गोरा मुसलमान। ये जो इक्वालिटी है, समानता, ये और किसी संप्रदाय में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नहीं है, जूडाइज्म में नहीं है, बौद्ध में नहीं है, जैन में नहीं है, सिख में नहीं है। इसका आकर्षण हमारे देश के उन लोगों को रहा जो जाति में इज्जत से नहीं रह सकते। जाति में रहना जिन्हें, जिनको प्रतिष्ठा के जिनके प्रतिकूल था, वो जाति तो बदल नहीं सकते हैं। हिंदू समाज में रहकर भंगी ब्राह्मण बन सके, ये तो असंभव है। इसलिए उसको धर्म परिवर्तन के सिवा दूसरा चारा नहीं था। मुसलमानों की समानता का आकर्षण था, लेकिन मुसलमानों में जो रियलिटी है, वास्तविकता है, वो है संप्रदाय, संप्रदायवाद की। इसलिए मुसलमानी संप्रदायवाद में से पैदा हुआ पाकिस्तान। असल में धर्म का भाषा के साथ कोई संबंध नहीं होना चाहिए। क्या दुनिया के सारे मुसलमानों की भाषा उर्दू है? लेकिन ये सिख और मुसलमान दो जमातें ऐसी हैं इस देश में जिनका, जिनकी भाषा धर्म के साथ जुड़ी हुई है, भाषा ही नहीं लिपि भी। सिख की सिर्फ गुरुमुखी भाषा, पंजाबी भाषा नहीं, गुरुमुखी लिपि भी उसके धर्म के साथ जुड़ी हुई है, और मुसलमान की उर्दू भाषा और लिपि जुड़ी हुई है। अब इसको आप सोचिए, ये कितना भयानक है, ये धर्म के साथ लिपि जुड़ी हुई हो। क्रिश्चियंस कई भाषाएं बोलते हैं, कई लिपियों में लिखते हैं, बौद्ध अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं। इसलिए हमारे देश में जो भाषिक आंदोलन हुआ, इसमें मुसलमान शामिल नहीं हुए। ये जितने भाषिक राज्य के आंदोलन हुए, इसमें आप देख लिए कि इसमें मुसलमान शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो संप्रदायवादी है। इस संप्रदायवाद को मैंने डिनोमिनेशनल नेशनलिज्म कहा। ये नेशनलिज्म हमारा डिनोमिनेशनल है। कुंभ मेले में 70-80 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, और हमारे विनोबा भाई भी कहते हैं कि इसमें भारत का दर्शन होता है। क्या कुंभ मेले में भारत का दर्शन होता है? हिंदुओं की प्रचंड संख्या है, हिंदुओं का दर्शन होता है, वहां भारत का दर्शन नहीं होता। जहां सबका दर्शन होता है, ऐसी संस्था तो बाजार ही है, और कोई संस्था मुझे दिखाई नहीं देती। इसलिए सेक्युलर बाजार ही है असल में। बाकी कोई सेक्युलर संस्था दिखाई नहीं देती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आर्थिक क्रांति की तरफ आना है और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होगा इसको सोच लीजिए जरा। इस देश में जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो क्या होगा? राज्यों को ज्यादा अधिकार दीजिए। इसका मतलब है कि गुजरात को अधिक अधिकार, महाराष्ट्र को अधिक अधिकार, तमिलनाडु को अधिक अधिकार। इसका अर्थ यह है कि महाराष्ट्र का आदमी गुजरात के आदमी को आने से मना कर सकता है और तमिलनाडु का आदमी उत्तर के मनुष्य को आने से मना कर सकता है। वस्तुओं का आना रोक सकता है, मनुष्यों का आना रोक सकता है। तब क्या होगा? अहमदाबाद की यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट गुवाहाटी के यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से ट्रेन में मिलता है। अब ये दोनों ग्रेजुएट एक दूसरे से बात कैसे करें? बड़ी मुश्किल की बात है। इशारों से ही कर सकते हैं। मित्रों, ये भाषावाद हमको ट्राइबलिज्म की तरफ ले जाएगा। वी विल रिलैप्स इनटू सो मेनी ट्राइब्स। वो बातें ही नहीं कर सकेगा एक दूसरे से। दुभाषिया चाहिए और दुभाषिया अगर मूर्ख या शोधा हो तो वो समझता ना हो भाषा के अच्छी तरह से। पट्टा भी ने लिखा है कांग्रेस का इतिहास, इसमें एक शब्द आता है कैनोनाइज। कैनोनाइज का अर्थ है देवता बना देना। दीज ग्रेट लीडर्स वेर कैनोनाइज्ड। ये जो बड़े बड़े हमारे नेता हुए इनको हमने देवता स्वरूप माना, ये उसका अर्थ है। भाषांतर करने वाले को कैनोनाइज शब्द मालूम नहीं था, कैनन मालूम था तोप। तो उसने लिख दिया है कि उनको तोप से उड़ा दिया। अब आप सोचिए, हमारा वसुदेव दादा पाटिल है वो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था, वो अंग्रेजी नहीं जानता और इंदिरा जी मराठी नहीं जानती हैं। अब इन दोनों के बीच में दुभाषिया हो तो वो इन दोनों को लड़ाई करा सकता है। क्या ये देश इस तरह रहेगा? आज मुझसे मित्र पूछ रहे थे कि ये देश एक रहेगा कि क्या रहेगा, तो इसका उत्तर तो ज्योतिषी दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन ट्रेंड मैं बतला रहा हूं, ये देश किस तरफ को जा रहा है। बाजार में दुकानदार गुजराती होगा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर गुजराती होगा, वाइस चांसलर गुजराती होगा, सरकारी नौकर सब गुजराती होंगे, मजदूर गुजराती होंगे। तो फिर गुजरात ही विश्व बन जाएगा और गुजरात के आकार का मनुष्य दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, भारत के आकार का नहीं। ये जो गुजरात के आकार का मनुष्य दिल्ली पर के कुर्सी पर बैठेगा तो वो कौवा का गरुड़ बन जाएगा। प्रासाद शिखर स्थोपी काको न गरुड़ आए थे। मंदिर के शिखर पर बैठ जाने से कोई कौवा गरुड़ नहीं बन जाता है। ये बौने अपने अपने छोटे छोटे जिलों के नाप के आदमी अखिल भारतीय कुर्सियों पर बैठेंगे। मन इसका अपने जिले के आकार का होगा और वोटर भी उसी को वोट देगा जो जिले के आकार का हो। इस डिसेंट्रलाइजेशन में से लोकलिज्म क्षुद्र क्षेत्रवाद पैदा हो सकता है। इसका विचार इस देश को करना होगा। ये नारा बहुत अच्छा है, गांधी के नाम पर चल रहा है, जेपी के नाम पर चल रहा है, विनोबा के नाम पर चल रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा किसी के नाम के साथ समस्या को मत जोड़िए। समस्या देश के नागरिक की है, गांधी की नहीं, विनोबा की नहीं, जेपी की नहीं, मेरी नहीं। समस्या इस देश के साधारण नागरिक की है। क्या इस देश का के एक जगह का नागरिक दूसरी जगह के नागरिक के साथ रहना चाहता है? दिस इज द टेस्ट ऑफ नेशनलिज्म। कन्याकुमारी का मनुष्य लद्दाख के मनुष्य के साथ और द्वारका का मनुष्य नागालैंड और नेफा के मनुष्य के साथ अगर रहना चाहता है तो इस देश में राष्ट्रीयता आएगी, नहीं तो आप याद रखिए नागालैंड आपको मिल सकता है, कश्मीर की जमीन मिल सकती है, लेकिन इस देश में राष्ट्रीयता कभी नहीं पनपेगी। मौका मिलते ही वो अलग होने की बात करेंगे, जो तमिलनाडु हमेशा करता रहा है। और आज तो क्या खतरा है, पूर्व का खतरा है ही, दक्षिण का भी खतरा है, कश्मीर का भी खतरा है। नतीजा क्या है मित्रों? ये इतना बड़ा 55 करोड़ लोगों का देश हमेशा डरता ही रहता है। और किससे डरता है? पाकिस्तान से डरता है, जो इससे कितना छोटा है। कभी चीन से डरता है तो अमेरिका की दामन में छुपता है, कभी अमेरिका से डरता है तो रशिया की तरफ दौड़ता है। इसका अपना कुछ है ही नहीं, इसका कारण है इस देश की सेना के पीछे नागरिक की शक्ति नहीं खड़ी। नागरिक की शक्ति सैनिक की शक्ति से भिन्न होती है। सैनिक की शक्ति शस्त्र शक्ति होती है, नागरिक की शक्ति शस्त्र निरपेक्ष वीरता होती है। वो शस्त्र निरपेक्ष वीरता हमारे देश में नहीं है। हम सबके पास प्रश्न ही प्रश्न है, जवाब कोई खोजता ही नहीं है, और पूछते ऐसे हैं जैसे हम सब ज्योतिषी हों। इस देश का क्या होने वाला है, कौन करने वाला है, जैसे भूकंप है क्या अपने आप आने वाला है, या रेल है, फ्लड है, अपने आप आएगा। इस देश का भविष्य जो तुम बनाओगे वो होगा। लेकिन हमारा देश बहुत अद्भुत है, इसमें सिर्फ ताजमहल ही अद्भुत नहीं है, और भी बहुत अद्भुत चीजें हैं। इस देश में कर्म भी दैव हो गया है। अब कर्म तो मनुष्य का किया हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र है, इसका मतलब ही यह है कि वो करना चाहे तो करता है, ना करना चाहे तो ना करता है, दूसरी तरह करना चाहे तो दूसरी तरह करता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये कर्म की स्वतंत्रता है। मैं भरूच से राज पीपला चाहूं तो ट्रेन से जा सकता हूं, चाहूं तो मोटर से जा सकता हूं, चाहूं तो पैदल भी जा सकता हूं, या नहीं भी जा सकता हूं, यह स्वतंत्रता है। अब मनुष्य का जो कर्म है उसी को उसने दैव बना दिया यहां के मनुष्य ने। ये तीन स्केपगोट्स हैं, अपने कामों के लिए हमने तीन जिम्मेवार रख लिए हैं जिसमें हमारी जिम्मेवारी न रहे। पहला जिम्मेवार है ईश्वर, बेटा मर गया भगवान की इच्छा थी, बेटा जीता रहा हमारी इच्छा थी, हमने जिलाया उसको, लेकिन मर गया तो भगवान को उसी मंजूर नहीं था। एक स्केप गोट सबसे बड़ा भगवान है, उससे दूसरा स्केप गोट है कर्म। अरे क्यों भाई तुम्हारी ऐसी हालत, क्या करें, हमारा कर्म ही ऐसा है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और तीसरी है सरकार। बस ये तीन स्केप गोट हो गए और हम स्वतंत्र मुक्त हो गए सारी जिम्मेवारी से। अब जिस देश में नागरिक गैर जिम्मेवार होगा उस देश में नॉन करप्ट और रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये कैसे आप इसे उम्मीद कर सकते हैं? ये आशा करना कितना व्यर्थ है। हम अपने जीवन की जिम्मेवारी अगर स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो सरकार, वो तो हमारी बनाई हुई है। मैंने कल आपसे कहा था सुपारी के गणेश हैं, हमारी बनाई हुई सरकार है, वो कैसे नॉन करप्ट हो सकती है? आपके मंदिरों में पंडा पुजारी करप्ट है, आपके सारे धार्मिक विधियों में यज्ञ होते हैं, भागवत के प्रवचन होते हैं, उनमें से 70% पैसा काला पैसा होता है। वो कहता ही यह है कि काला पैसा अगर बढ़ेगा तो सत्यनारायण की कथा कराऊंगा, कराता है। हमारी मंदिर मस्जिद दुकानों पर चलते हैं, हर मंदिर के साथ दुकान है, हर मस्जिद के साथ दुकानें हैं, जिनके भरोसे वो चलती हैं। बाजार में हमारा देवता बैठा हुआ है, बाजार में हमारा धर्म बैठा हुआ है। विनोबा से एक दफा मैंने कहा था कि आजकल काला बाजार बहुत हो गया है, तो उसे कहने लगे तुम्हारे जैसा भी आदमी ऐसी बातें करता है। मैंने कहा इसमें क्या बात है, जो कह है वो कह रहा हूँ। तो मुझसे पूछने लगे कि कभी बाजार कभी गोरा भी थे क्या? ये कहो कि गैर कानूनी बाजार बढ़ गया है, काला पैसा तो सिर्फ गैर कानूनी पैसा है और तो कोई पैसा है नहीं। वो पैसा तो पैसा ही है, वो काला था तो काला ही था, कभी गोरा था ही नहीं वो। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि इस देश में जितनी विविधता है वो जब तक संवादी नहीं होगी तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। जैसा अभी आपने गाना सुना, इसमें गाने वाले की आवाज, हारमोनियम और तबला तीनों में कंकार था, हारमनी थी, संवाद था, इसलिए वो मधुर लगा। इस देश में जितनी विविधता है वो अगर परस्पराभिमुख नहीं होगी, भाषाएं परस्पराभिमुख, जीवन पद्धति परस्पराभिमुख, ये जब तक नहीं होगा तब तक अब राष्ट्रीयता का विकास नहीं होता। और मैं ये कह देना चाहता हूं बहुत जिम्मेवारी के साथ कि आज का पढ़ा लिखा तरुण और तरुणी इसके ठीक उल्टी दिशा में जा रहे हैं। उनके सारे आंदोलन किस लिए हैं कि गुवाहाटी की यूनिवर्सिटी में बंगाल का विद्यार्थी नहीं आएगा, मुल्की लोकल होना चाहिए, यानी ये सब राज्यवादी हो गए हैं, ये कोई राष्ट्रवादी नहीं बने हैं। और राज्य तो डिवाइसिव होता ही है मित्रों, राजा का बेटा भी उसका भरोसा नहीं कर सकता। कोई राजा ये काका साहब और रविशंकर महाराज की तरह 95-95 साल तक जिए तो बेटा डरता है कि इससे पहले ही मैं मर जाऊंगा तो तख्त पर बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए हर राजा का बेटा प्रार्थना करता रहता है कि भगवान इसको मृत्युदान शीघ्र दे। ये पॉलिटिक्स का स्वभाव है मित्र, जिस पॉलिटिक्स को सत्तावाद कहते हैं उसका यह स्वभाव है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन यह किया कि अब पॉलिटिकल लेवल पर, यानी वो पॉलिटिकल लेवल, पार्टी पॉलिटिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स के स्तर पर अब हमारी समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या का हल लोगों को करना पड़ेगा, और वो लोग कौन से जो परस्पराभिमुख होंगे? ये लोग ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। और ऐसे लोग होने चाहिए जो वोटर के पास उसकी निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जाएंगे, उसको सिखाने के लिए नहीं और वोट मांगने के लिए नहीं। वोट मांगना अलग चीज है और वोटर को जगाना अलग चीज है। जो वोट मांगने जाएगा वो उसको जगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो जाग जाएगा तो इसकी बात मानेगा नहीं। जो वोट मांगने जाता है वो वोटर का प्रशिक्षण नहीं कर सकता, एजुकेशन ऑफ द इलेक्टोरेट वो नहीं कर सकता जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है। उम्मीदवार को